مکمل آیت کا مفہوم بیان نہیں کر سکتے, چاہے وہ کتنا ہی کلوزسٹ گرامٹیکل انالیسس کے تھرو کی گئی ہو. یہ آپ کا اور میرا بلیف ہونا چاہیے. کوئی پرفیکٹ قرآن کو ترجمانی کر ہی نہیں سکتا قرآن کی, یہ ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں جب تفسیر لکھنے والے جنہوں نے والیومز کے والیومز تفسیر لکھ دیں, وہ آخر میں لکھ دیتے ہیں واللہ اعلم, تو پھر ٹرانسلیشن لکھنے والے کے پاس تو لمیٹیشن ہوتی ہے, وہ ون لائنر یا ٹو لائنر سے زیادہ وہاں پر بات نہیں لکھ سکتا, اس سے زیادہ اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی زبان ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنے خزانے رکھے ہیں کہ آپ اور میں اس کو مکمل سمجھ ہی نہیں سکتے. تو آپ کے سامنے جو میں نے دو ٹرانسلیشن ہنالکا کے رکھے ہیں, یہ کوئی اس کا پرفیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے, اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو کہیں اور اس کا بہتر ترجمہ سننے کو مل جائے. لیکن صرف آسانی سے سمجھنے کے لیے ہنالکا کا ترجمہ کیا ہے, ہیئر اٹ بیکمز کلیئر, یہاں بات واضح ہو گئی کہ اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا. جب اللہ نے یہ کہا پچھلی آیت میں کہ اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی اللہ کے مقابلے میں مدد کرتی, وما کان منتصرا, نہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا تھا, تو اب اللہ نے یہ جو اگلی آیت شروع کی اس لفظ کے ساتھ ہنالک, اب بات واضح ہو گئی. الولایت للہ الحق, اصل میں اتھارٹی اللہ برحق کے پاس ہے, اصل میں پروٹیکشن اللہ برحق کے پاس ہے, اصل میں ڈیفنس اللہ برحق کر سکتا ہے, اصل سپورٹ اللہ دے سکتا ہے. نہ میرا مال مجھے سپورٹ کر سکتا ہے, نہ میری اولاد مجھے سپورٹ کر سکتی ہے, نہ میری دنیا کی نعمتیں مجھے سپورٹ کر سکتی ہیں, سپورٹ کرنے والا اوپر بیٹھا ہے. اصل ولایت اس کی ہے, اللہ ولی ہے, ولایت اسی لفظ سے ولی بنا ہے. اور اللہ کن کا ولی ہوتا ہے؟ اللہ کے جو اجازت ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. اللہ کافر کی سانس تو نہیں روک لیتا, اللہ جبار کے پیروں سے زمین تو نہیں کھینچ لیتا, اللہ فاجر کا جو ہے وہ رزق تو بند نہیں کر دیتا. تو ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا اور ایک ہوتا ہے اللہ کا اذن. اللہ کا اذن ہر ایک کے ساتھ ہے, جو انسان کرتے ہیں دنیا میں وہ اللہ کی اجازت سے ہی کرتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے. ہاں, اللہ کی رضا ان کاموں میں ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے کام ہیں, اللہ کی رضا ان کاموں میں ہے جو اللہ کے پسند کے کام ہیں. اللہ کی رضا ان کاموں میں آ جائے گی جب انسان ان کاموں سے رکے گا جن سے اللہ نے رکنے کا کہا ہے. تو اللہ کی ولایت خاص طور پر مومنین کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کی سپورٹ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کا اسپیشل ڈیفنس مومنین کے ساتھ ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کن کا ولی ہے؟ ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں, جو اپنے دل میں اللہ کی محبت کا یقین رکھتے ہیں, جو اپنے دل کے سینٹرل پارٹ میں, کور آف یور ایگزسٹنس میں اللہ کو رکھتے ہیں, جس کو آپ عربی زبان میں لب کہتے ہیں. لب آپ نے عربی میں پڑھا ہے نا, اولول الباب آتا ہے قرآن کے اندر, الباب لب کی جمع ہے. اور لب عربی زبان میں کہتے ہیں ہارٹ آف دا میٹر, کسی بھی چیز کا سینٹرل پارٹ, موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. آپ کا دل آپ کا لب ہے, اور آپ کے دل کے اندر ایک خاص پوائنٹ ہے. جیسے آپ ہمارے دل میں اللہ نے سمجھ لیں مختلف اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں, فزیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بتا رہی, میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بتا رہی ہوں. میڈیکل سائنس تو آپ کے دل کے چار چیمبر بتاتے ہیں, اور بیوٹیفلی اسپرچویلٹی میں بھی چار چیمبر بتائے جاتے ہیں. ویسے اٹس اے بیوٹیفل تھنگ, اگر کبھی موقع ملے اس کو سمجھنے کا تو اللہ کرے کہ کوئی ایسا استاد ملے جو اس کو سمجھائے. اٹس اے بیوٹیفل کمپیریزن کہ اسپرچویلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دل کے چار چیمبرز ہیں, اور آپ کی میڈیکل سائنس بھی آپ کے دل کے چار چیمبرز بتاتی ہے. بٹ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس, ظاہر بات ہے. آپ جب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے تو اس میں آپ کو ساری جو ہے وہ بلڈ کا فلو ان اور فلو آؤٹ بتانا ہوگا, اور جب آپ اس کو اسپرچوئل پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے تو آپ اپنی روح کے اینگل سے, آپ اپنے تزکیہ کے اینگل سے, آپ اپنے اعمال کی کلنزنگ کے اینگل سے بات کرتے ہیں. آپ کے دل میں مختلف کمپارٹمنٹس ہیں اسپرچوئل پوائنٹ آف ویو سے. ان میں جو مین آپ کے دل کا سینٹرل پارٹ ہے جس کو آپ لب کہتے ہیں, لب آپ کی عقل کا بھی ہوگا, لب آپ کے دل کا بھی ہوگا, دونوں الگ الگ کام کریں گے. بٹ میں نے آپ کو جو پچھلے کلاسز میں بتایا تھا, جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہے وہ کون ہے, دماغ یا دل؟ وہ دل ہے, یاد رکھیں. तो अल्लाह ताला ने ये जो लुब बनाया है दिल का सेंट्रल कोर, ये समझ लें एक खाली हिस्से की तरह है, और इस खाली हिस्से को सिर्फ एक चीज फिल कर सकते हैं, और वो है अल्लाह की मोहब्बत। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल। आप इस हिस्से में अगर कोई भी चीज लेकर आ जाएंगे दूसरी, तो ये आपके दिल को, आपके किरदार को, आपकी पर्सनैलिटी को करप्टेड कर देगा। मैं बहुत सिंपल सी मिसाल देकर बस आगे जाऊंगी ताकि हमें वली की मिसाल और वली का कॉन्सेप्ट समझ आए। ये जो आपके दिल का सेंट्रल कोर होता है, इसमें आप कुछ और डालेंगी तो ये आपके दिल को भी खराब करेगा और आपके किरदार को भी खराब करेगा। इसलिए कि मिसाल के तौर पर आपकी कार का जो पेट्रोल टैंक है, सही, आपके पास पेट्रोल नहीं है और आप जाती हैं गैस स्टेशन पे और आपका ड्राइवर कहता है कि बाजी पेट्रोल तो नहीं है, वो सामने से ऑरेंज जूस मिल रहा है, तो वो लाके इसमें डाल दूं? तो आप कहती हैं हाँ, तो घर तो जाना है ना, तुम ऑरेंज जूस लाके इसमें डाल दो, तो कार चलेगी आपकी? ना सिर्फ आपकी कार चलेगी नहीं, बल्कि और क्या होगा, आपकी कार डैमेज हो जाएगी, इंजन डैमेज हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपकी कार का इंजन बना ही नहीं है उस ऑरेंज जूस को हैंडल करने के लिए, वो सिर्फ बना ही पेट्रोल को हैंडल करने के लिए है। सेम इज द केस विद द लुब ऑफ योर हार्ट। आपका दिल का जो लुब है वो किसी और मोहब्बत को सस्टेन करने के लिए बना ही नहीं, वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत को रख सकता है। मगर जब हम जबरदस्ती उसके अंदर कभी माल लाते हैं, कभी औलाद लाते हैं, कभी स्पाउस लाते हैं, कभी बहन भाई लाते हैं, कभी अपनी कोई मटेरियलिस्टिक चीज लाते हैं, हम अपने दिल के उस पार्ट को करप्टेड कर रहे होते हैं, उसको खराब कर रहे होते हैं। आपकी विंडोज करप्ट हो जाती हैं, आपका लैपटॉप में जो डला होता है सॉफ्टवेयर, अगर वो करप्ट हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है? इट विल नॉट फंक्शन वेल। जिस काम के लिए वो लैपटॉप है वो काम वो नहीं करेगा। तो जब अपने दिल के लोब में वो लेकर आएंगे जो अल्लाह ने डालने को नहीं कहा, यू विल नॉट फंक्शन वेल। आप वो करेंगी जो आपको नुकसान देगा, और इंसान यही करता है। जब भी हम इंसान इतना ज्यादा आज उदासी का, गम का, परेशानी का, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, हम उनसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते, जो हमारे जैसे इंसान है जिनमें हमारी तरह कमी और कमजोरी है। हम क्यों नहीं मजबूत सहारा थामते हैं? वो मजबूत सहारा जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी भी कर सकता है और जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अल्लाह किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। अल्लाह हर तरह की प्रोटेक्शन देने वाला भी है और उसको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। हम मजबूत सहारा नहीं थामते जब भी हम रोते हैं। और आप कभी सोचें कितना हम दुआओं में आंसू बहाते हैं और कितना हम इंसानों की मोहब्बत में आंसू बहाते हैं। जिससे हम मोहब्बत करना चाहते हैं वो हमसे मोहब्बत ना करे तो हम कैसे रोते हैं, धाड़ो धाड़। औलाद हमारी बात ना माने तो हम कैसे रोते हैं। शौहर जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक एक्ट ना करें तो हम कैसे रोते हैं। चले आंखों से नहीं रोते होंगे तो दिल से तो रोते ही होंगे। आप कहें लो हम तो खून के आंसू रोते हैं। रोते हैं इंसानों के लिए और रब की मोहब्बत में नहीं रोते। हमारा वही हाल है कि हम चढ़ रहे हैं एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे, और लिटरली हम चढ़ रहे हैं। आप में से जिन लोगों ने पिछले रमजान में सूरतुल फातिहा की तफसीर सुनी थी, आपको याद होगा डेफिनेशन ऑफ सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम, सिरात कहते ही अरबी जबान में सीधे को है, बिल्कुल सीधा। और साथ में अल्लाह ताला ने उसके लिए एक एडजेक्टिव लगा दिया अल मुस्तकीम। तो सीधा अल मुस्तकीम, सीधा, ये क्या बात हुई? ये वो रास्ता है जो सीधा तो है मगर ये रास्ता हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल है, इट्स गोइंग स्ट्रेट अप, ये अल्लाह की तरफ जा रहा है। तो एक तरह से हम पहाड़ पर तो चढ़ ही रहे हैं ना। आप इमेजिन करें कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आपने एक बहुत मजबूत रस्सी पकड़ी हुई है, आपको दी गई है एक मजबूत रस्सी, और आप एक मजबूत रस्सी को आप पकड़े पकड़े चढ़ती हैं और आधे पहाड़ पर आप पहुंचती हैं। उसके बाद आप कहती हैं रास्ते में आपको एक छोटी सी ट्विक नजर आती है, ब्रांच नजर आती है, आप रस्सी को छोड़ के उस ट्विक को पकड़ लेती हैं, क्या होगा? टू साइडेड इफेक्ट। नंबर वन, आप गिरेंगी, समथिंग कॉल्ड ग्रेविटी, आप धड़ाम से जमीन पर गिरेंगी, और दूसरा आपने ट्विक भी तोड़ दी। हम इंसानों के साथ ये करते हैं, हम ऐसे इंसानों से लटक जाते हैं, ऐसे इंसानों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते, हमारा बोझ नहीं उठा सकते, हमारी इमोशनल पावर का सामान नहीं हो सकते, अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है अल्लाह को थामिए. ये जो यहां बात आई है ना, हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, कहने को एक जुमला है मगर ये पूरी फिलॉसफी है अल्लाह के साथ मोहब्बत की, हुब्बुल्लाह की पूरी फिलॉसफी है इसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत की. असल में विलायत सिर्फ, मोहब्बत सिर्फ, दोस्ती सिर्फ, प्रोटेक्शन सिर्फ, अपना डिफेंस सिर्फ मैं और आप अल्लाह के साथ कर सकते हैं, अल्लाह से जुड़ के कर सकते हैं. उस छोटी छोटी ट्विक्स पर क्या अपना जो है वो तकिया बनाना, उस रब को थामे जो रब आपको गिरने नहीं देगा, जो रब आपको हमेशा से प्रोटेक्ट करता रहा है और हमेशा प्रोटेक्ट करता रहेगा. तो अपने दिल की हिफाजत कीजिए, अपने इस सेंट्रल कोर की हिफाजत कीजिए. हम में मसले ये होते हैं कि हम बार बार भूल जाते हैं, इंसान है ना, गलती करते हैं. हम अपने इस दिल के सेंट्रल कोर में अल्लाह को लाते हैं मगर फिर किसी दुनियावी गफला की वजह से अल्लाह की जगह कोई और आके बैठ जाता है. कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट, जब तक कि आपको मौत का फरिश्ता नजर ना आए. कीप रिग्रेटिंग कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, एंड कीप गोइंग बैक टू हिम, अल्लाह मैं आपकी तरफ वापस पलटती हूँ. यही मुझे और आपको करना है और यही जिंदगी का नाम है. जिस वक्त आपके लगे कि आपके इस लुक के अंदर और मोहब्बतें आ रही हैं, कॉन्शियस हो जाएं और अल्लाह से जुड़ जाएं और अल्लाह से मदद मांगे. अल्लाह ने आगे फरमाया, हुआ खैरुन सवाबन व खैरुन उकबा, अल्लाह की तरफ से जो सवाब है उसका सवाब सबसे बेहतर और उसको मानने का अंजाम भी सबसे बेहतरीन है. यानी बेस्ट एंड रिजल्ट्स अल्लाह के पास है. जो अल्लाह से अपना मामला मोहब्बत का कर लेता है उसकी आखिरत बेहतरीन है, उसका रिवॉर्ड बेहतरीन है, उसका अंजाम, उसका एंड रिजल्ट बेहतरीन है. और अल्लाह ताला दुनिया में भी मोमिनीन का वली होता है. आखिरत में तो वली है ही अल्लाह मोमिनीन का, अल्लाह दुनिया में भी मोमिनीन का वली होता है. और यही पता चलता है कि जब आप पर मुश्किल आती है उस वक्त आप कितना अल्लाह से जुड़ जाती हैं, दिस विल टेल यू कि आप कितना अल्लाह को वली बनाकर बैठे हैं. बाज़ लोग मुश्किलात में अल्लाह से बदगुमान हो जाते हैं, इसका मतलब है हमने अल्लाह को वली नहीं बनाया. अल्लाह को वली बनाने वाले मुश्किलात में भी जो हैं वो अल्लाह के ऊपर नजर जमा कर रखते हैं और अल्लाह से ही उम्मीदें अपनी बांध कर रखते हैं. तो अल्लाह ताला ने यहां पर बेहतरीन अजर के हिसाब से और बेहतरीन एंड रिजल्ट के हिसाब से बता दिया कि विलायत अल्लाह ही के पास है. ये जो वाक्या पूरा आया है, इस वाक्य को अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करें तो आपको बताया था कि इस वाक्य का टाइटल बनता है दौलत का फितना, माल का फितना, फितना ऑफ वेल्थ, मटेरियलिज्म का फितना. और मटेरियलिज्म का फितना जिस तरह से आज मुझे और आपको खा रहा है, मुसलमान उम्मत को खा रहा है, उतना शायद इससे पहले उम्मतों को नहीं खाया होगा इसने. इसलिए कि हमें अपने जिंदगी के अंदर अपने इस चीज को समझने की जरूरत है कि हम दुनिया बनाते बनाते अपनी आखिरत तबाह ना कर लें. और जनरली यही हो रहा है, हम दुनिया बनाते बनाते आखिरत को दांव पर लगा रहे हैं. बास स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में वो मुश्किल मुबारक है जो मुश्किल उसको अल्लाह से जोड़ दे. और आज मुसलमान उम्मत पर बड़ी मुश्किल आता है, एक अच्छा मौका मिला हुआ है हमें अल्लाह से जुड़ने का, बजाय इसके कि हम इसको अपना वीकेस्ट लिंक बना लें, हम इसको अपना दोबारा खड़ा होने का स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक बना सकते हैं. अल्लाह हमें मुश्किलात में झंझोड़ रहा है कि जागो, अब भी ना जागोगे तो कब जागोगे. इस शख्स ने भी अपनी मुश्किल के ऊपर जब इस पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई तो इसने बेहतरीन तरीके से उससे सबक सीखा और ये तौहीद की तरफ आ गया. मुश्किलात में अल्लाह को थाम लेना तौहीद का बेहतरीन तोहफा है. हमारी उम्मत एक परफेक्ट टाइम ऑफ ग्लोरी देख चुकी है और उस ग्लोरी के बाद से, 17th सेंचुरी के बाद से मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया था और उसके बाद से आज तक ये मुसलमान उम्मत दोबारा खड़ी नहीं हुई. और जब तक ये उम्मत नहीं खड़ी होगी, जब तक कि इसको एहसास नहीं होगा कि अल्लाह ने इसे क्या वापस लिया है. आप देखें, और ये अल्लाह की ये समझ लें सुन्नत है, अल्लाह आजमाता है और फिर अल्लाह मौका हटा देता है. हमारा मामला, अगर आप मुसलमान उम्मत की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको मुसलमान उम्मत की हिस्ट्री बनी इसराइलियों से बड़ी डिफरेंट नजर आती है. बनी इसराइलियों को अल्लाह गिराता था, वो फिर उठाता था, गिराता था फिर उठाता था. अल्लाह बार बार उनको नेमत देता था और खड़ा करता था। हमारे मुसलमानों की हिस्ट्री आप पढ़ें, जिस वक्त अरब के पास से खिलाफत हटी है उसके बाद दोबारा अरब्स में नहीं गई खिलाफत, फिर वो मंगोल्स और टर्क्स के पास आ गए। टर्क्स और मंगोल्स के पास से खिलाफत हटी है तो दोबारा वो उनके पास खिलाफत नहीं गई, नहीं गई ना। ये क्यों नहीं हुआ? अल्लाह इस उम्मत से एक्सपेक्टेशंस हाई रखता है। अब अल्लाह खिलाफत दोबारा आखिरी मर्तबा इस उम्मत के ऊपर लेकर आएगा, और अल्लाह कहां लेकर आएगा? जो बाज स्पेकुलेशंस करने वाले, जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं और वो मुख्तलिफ कुरान की आयात और अहादीस से उसको जो है वो स्पेकुलेशंस करके बताते हैं, उनका ख्याल है कि जो नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे याफिस, उनकी औलाद में से अब जो उनकी आगे नस्लें होंगी उनके अंदर अब खिलाफत जो है वो उम्मत के आखिरी हिस्से में आएगी। वल्लाह वालम, बहरहाल इसकी डिटेल पे बात करने का तो इस वक्त नहीं है, लेकिन समझाने का बात यह है कि अल्लाह ने हम मुसलमानों की कमजोरियों की हमें काफी सजा दी है। हम जिस मुकाम पर थे हम उससे बहुत नीचे आ चुके हैं। अगर अब भी हमने अपनी गलती पर रिग्रेट नहीं किया तो फिर हम अल्लाह की तरफ कब पलटेंगे? कब हम अपने आप को उम्मत के तौर पर खड़ा कर सकेंगे? और इस कहानी से यही सबक मिल रहा है कि अल्लाह मुझे और आपको ऐसे लोगों में शामिल करे कि जो अल्लाह की तरफ जिंदगी में ही पलट कर आ जाएं, जिनका तवक्कुल दुनिया पर ना हो, जिनका तवक्कुल रब पर हो। तो इसमें चंद लेसन्स इस कहानी से, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कहानी आपकी मुकम्मल हो गई है, चंद लेसन्स इससे ताकि आप और मैं इन लेसन्स को हर मर्तबा जुमे को जब सूरह काहफ पढ़ें तो ये लेसन्स हमें याद रहें। एक ये कि हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र करें अगर आप चाहते हैं कि वो नेमत कायम रहे, और ये शरीयत का उसूल है जो अहदीस से डिराइव किया जाता है। हर नेमत का शुक्र कीजिए अगर आप चाहते हैं कि वो नेमत कायम रहे। और शुक्र तीन तरह से होता है, दिल से शुक्र कि ये जिसने अल्लाह ने जो कुछ भी मुझे दिया है ये उसी की देन है, ये दिल से शुक्र। जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह, उस शुक्र को आर्टिकुलेट करना, जब याद आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब भी जिक्र करना शुरू करते हैं और हम कहते हैं कि अब मैं कोई भी वक्त जाया नहीं करूंगी और कंटिन्यूसली कोई ना कोई तस्बीह पढ़ती रहूंगी, जिस दिन आप ये फैसला करते हैं और आप पढ़ना शुरू करते हैं, दस के काउंट के बाद या पांच के काउंट के बाद ऐसा भूलते हैं कि शाम में याद आता है, कोई बात नहीं, शैतान बैठा हुआ है ना। जितना शैतान आपको भुलाने में एक्टिव हो उतना आप याद करने में एक्टिव हो जाए, और याद करना शुरू कर दें। जब याद आए जब पढ़ें, फिर भूल जाएंगी कोई बात नहीं, फिर पढ़िए। जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहिए अपनी हर नेमत के ऊपर, और फिर अमल से शुक्र अदा करना। और इंसान अमल से शुक्र कैसे अदा करता है कि अल्लाह के रास्ते में उस नेमत को लगाता है। अल्लाह ने आंख दी, उस आंख से वो नहीं देखता जो अल्लाह की नाफरमानी की चीज होगी। अल्लाह ने कान दिए, उन कानों से वो नहीं सुनेगा जिनसे अल्लाह की नाफरमानी होगी। अल्लाह ने अकल दी, उस अकल को अल्लाह के अहकामात को डिनाई करने में इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि उस अकल को कुरान के फहम में इस्तेमाल करेगा। तो ये तीनों शुक्र आपको और मुझे करने हैं। पहला है हर नेमत पर शुक्र करना, और शुक्र कैसे करना? दिल से, जुबान से और अमल से। तीसरी चीज जो इस कहानी से पता चल रही है, इंसान, हम इंसान हैं और हम सोशल लेवल पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करते हैं। हमें लोगों की बातें अच्छी भी लगती हैं और बुरी भी लगती हैं। आपको जब लोगों की बातें बुरी लगें तो प्लीज खामोशी से ज्यादा डायलॉग्स करने की कोशिश कीजिए, आपस में गुफ्तगू कीजिए। खामोशी से बैरियर्स बढ़ जाते हैं, डायलॉग्स करने से बैरियर्स छोटे होना शुरू होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। और यह हमें खानदानी लेवल पर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें किसी रिश्तेदार से नाराजगी होती है तो हम उसे बात करना छोड़ देते हैं। आपको उनकी कोई बात बहुत बुरी लगी, हम उनसे बात नहीं करते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। बजाय इसके कि आप खामोशी इख्तियार कर लें, इट्स बेटर टू डू डायलॉग्स। इससे क्या होगा कि इंशाल्लाह आपको अच्छी बात सुनने का और अपनी गलती को दूर करने का और अच्छी बात बताने का मौका मिल जाएगा। तो एक इस कहानी से हमें यह पता चलता है। दूसरा, आपको नसीहत का भी मौका मिल जाएगा, और सिर्फ रिश्तेदार नहीं, दोस्त अहबाब भी इसके अंदर आते हैं। कुरान कहता है उदगु इला सबील रब्बी का बिल हिक्मा, अपने रब की तरफ हिकमत के साथ बुलाओ। और अक्सर हम लोग कहते हैं ये हिकमत कैसे आती है? हिकमत की डेफिनेशन सिंपल जो हम दी जाती है, हिकमत की तो बहुत ही सारी डेफिनेशन हैं। अगर आप डिक्शनरीज निकाल कर देखें तो हिकमत की डेफिनेशंस आपको कम से कम 40-50 डेफिनेशंस मिलते हैं. लेकिन सिंपल डेफिनेशन हिकमत कहते हैं, विजडम कहते हैं, सही बात को सही अल्फाज में सही वक्त में सही इंसान को कह देना. दिस इज हिकमत. सही बात को सही अल्फाज में सही वक्त में सही इंसान को कह देना. और हिकमत आती कैसे है? इल्म के साथ. इल्म हिकमत लेकर आता है. इल्म, कुरान का इल्म, अहदीस का इल्म विजडम लेकर आता है. तो आज हमें भी यही सीखने की जरूरत है कि हम लड़े नहीं आपस में, बल्कि हम हिकमत के साथ मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करें. आज मुसलमान मुल्क भी आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं. उठाकर देख लें अपने करंट सिचुएशंस, तकरीबन मुसलमान उम्मतों के अंदर ही इंटरनली 28 सिविल वॉर्स हो चुकी हैं. इसकी एक बेसिक वजह यही है कि हमारे यहां डायलॉग्स ट्रेडिशन नहीं है. हम एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं दूर बैठ के, फिंगर पॉइंटिंग करते हैं दूर बैठ के, और मसलों को हल करने के लिए टेबल्स पर आकर नहीं बैठते. यह हमारा एक बहुत बड़ा मसला है. तो यह हर लेवल पर करने की जरूरत है. और क्योंकि आप और मैं, हम अपने इंडिविजुअल एफर्ट की कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअली अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. औलाद के बारे में जितना माएं परेशान होती हैं, आप अपनी औलाद को दीन की तरफ कैसे ला सकते हैं? द ओनली थिंग इज डायलॉग, बात करके, और बार बार बात करके. दुआ तो करेंगे करेंगे आप, प्रैक्टिकली आपको डायलॉग्स करने पड़ेंगे, डिस्कशंस करने पड़ेंगे. आपको लगेगा वो सुनने को तैयार नहीं है, तो अल्लाह से हिकमत मांगे कि अल्लाह मैं 5 मिनट की बात करूं या 10 मिनट की बात करूं या किस वक्त बात करूं, मूड देख के बात करूं. अल्लाह हिकमत दे देता है. जो बंदा मांगता है अल्लाह देता है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के अल्फाज आते हैं कि अल्लाह को तो हया आती है कि बंदा मेरे सामने हाथ उठाए और अल्लाह उसको वो ना दे जो वो मांगता है. तो कैसे हो सकता है आप और मैं अल्लाह से हिकमत मांगे और अल्लाह हमें हिकमत ना दे? तो बेहतर यह है कि एक दूसरे से बातचीत करें. एंड सेम रूल अप्लाइज विद योर रिलेशनशिप विद हस्बैंड. जब शौहर से लड़ाई होती है, बस औरतें कहती हैं मैं झगड़ती नहीं हूं, मैं बहस भी नहीं करती, बस मैं खामोश हो जाती हूं. और फिर वो खामोशी कब तक चलती है? जब तक वो नहीं बुलाते मैं भी खामोश रहती हूं. तो जब अगर आपकी शादी को 6 महीने हुए हैं तो शौहर आपको आधे घंटे में बुला लेंगे, और अगर आपकी शादी को 20 साल हो चुके हैं तो हो सकता है 20 दिन भी गुजर जाए, उनको ज्यादा परवाह ना हो. ये तरीका सही नहीं है. सही तरीका क्या है? बात कीजिए. जहां उनको आपसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसको डिस्कस कीजिए. डिस्कस करने से याद रखें फासले कम होंगे. और डिस्कस करने के लिए ये नहीं हो रहा कि तू तड़ाक हो रही है, चाहे औलाद हो या शौहर हो सामने, झगड़े करने की बात नहीं और ये डिस्कशन करने के लिए. डायलॉग्स का मतलब ये नहीं है कि आस्तीनें चढ़ाई और वो एक जवाब दे रहे हैं तो आप 4 जुमले बोल रही हैं और आप कह रही हैं कि हाँ मुझे तो हर बात का जवाब देना आता है, अब क्या करूं, बात ही गलत करते हैं तो जाहिर बात है मैं जवाब दूंगी. इसकी बात नहीं हो रही है. बात यह हो रही है टॉक टू ईच अदर, नॉट टॉक एट ईच अदर. एक दूसरे के साथ बात करें मामलात को दूर करने के लिए, नॉट एट ईच अदर. ये तो फिर झगड़ने वाला मामला हो जाएगा. बात करने से कन्फ्यूजन्स खत्म होते हैं. और इसी चीज को अपने साथ लेकर चलें ताकि अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए दुनिया के अंदर मोहब्बतों को फैलाना और दीन पर चलना जो है वो आसान बना दे. तीसरी चीज, तीसरा लेसन, अल्लाह ताला ने यहां ये बात मेंशन कर दी है कि दुनिया की तमन्ना करना, जायज दुनिया की तमन्ना करना, इसकी इजाजत है. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना. हाँ, हम ये दुआ पढ़ते जरूर हैं और हम ये अक्सर जो हैं इसको कोट भी करते हैं कि अल्लाह के कलाम में ये हमें दुआ सिखाई गई है कि जहां आखिरत मांगो वहां दुनिया भी मांगो. लेकिन जरा इस दुआ को आप थोड़ा सा डीप डाउन सोचिए. इस दुआ में 3 हिस्से हैं. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना एक हिस्सा, अगला हिस्सा क्या है? व फिल आखिरती हसना दूसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा क्या है? वकीना अज़ाबन नार. इन 3 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा दुनिया है और 2 हिस्से आखिरत है. अल्लाह ने प्रोपोर्शन दे दिया है. ये नहीं हम कह सकते कि भाई जितनी दुनिया मांगते हैं उतनी आखिरत मांगते हैं, ना ना ना. यही दुआ कोट करते हैं ना, हम कहते हैं अल्लाह ने कहा दुनिया भी मांगो आखिरत भी मांगो, और फिर हम कहते हैं हम दुआ में आधी तो दुनिया मांगते हैं आधी आखिरत मांगते हैं. हालांकि ऐसा होता नहीं है. हम दुनिया में दुआ मांगते हैं तो 90% हम दुनिया मांगते हैं और फिर हमारी वही ट्रेन चल पड़ती है. अल्लाह ये दे ये दे ये दे ये दे ये दे ये दे और अल्लाह जन्नत भी दे दे. पहले ये दे ये दे ये दे सब दुनिया चलती रही اور اس کے بعد آخر میں جا کے سانس لینے کے لیے اچھا اللہ جنت بھی دے دے. اس دعا کو یاد رکھیں, اس میں ایک حصہ, ایک پورشن دنیا مانگنے کو کہا گیا ہے اور دو پورشن آخرت مانگنے کو کہا گیا ہے, تاکہ آپ کو اور مجھے یاد رہے کہ ہاں دنیا مانگنی ہے لیکن میرا ویژن آخرت ہونی چاہیے. اور اگلی چیز جو اس میں لیسن ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ آخر میں, آخرت میں متقین کو انعام دے گا. اور تقوی دنیا کی دولت سے کیلکولیٹ نہیں ہوتا, تقوی اللہ کی محبت سے, تقوی اللہ کے خوف سے, تقوی اللہ کی بات ماننے سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. اور یہ چیز ہمیں یہاں پر ایک لیسن اور بھی دیتی ہے اس کہانی میں, اور وہ کیا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والا انسان جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی شیورٹی سے نہیں کہتا کہ اللہ یقیناً مجھے جنت دے گا. اس کہانی میں دو لوگ تھے نا, جو متکبر تھا اس نے کہا تھا اگر میں لوٹایا گیا تو کیا ہوگا, اس سے بہتر, خیرم منہا منقلبا, اس دنیا سے بہتر پاؤں گا, اس کو یقین تھا. اور جو مومن تھا اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے, مجھے امید ہے, عسا ان یؤتینی, امید رجا کو مینشن کیا تھا اس نے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر باغ دے گا. مومن کا یہ ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ہوتا, مومن بین الخوف والرجا ہوتا ہے, یہ مومن کا معاملہ ہے. مومن شیورٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا, مومن کہتا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. ہاں اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے ہونے کے باوجود امید رکھتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے بدلے اس کو معاف فرما دے گا. تو یہ پورشن تھا سورۃ الکہف کا فورتھ, جو کہ الحمدللہ مکمل ہو گیا, جس میں کہانی تھی. اب سورۃ الکہف کا ففتھ پورشن شروع ہو رہا ہے, اور یہ ففتھ پورشن خطبہ ہے. اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ ففتھ پورشن تھوڑا لمبا خطبہ آئے گا, جس کے بعد اب دو کہانیاں آئیں گی. اس خطبے کا ٹائٹل آپ حقیقت الدنیا دے سکتے ہیں, ریالٹی آف دس ورلڈ, دنیا کی حقیقت, کیونکہ پیچھے ایک کہانی تھی جس کا تعلق دنیا کی نعمتوں کے ساتھ تھا. تو اب اللہ تعالیٰ جو آگے اپنی بات بیان کر رہے ہیں نصیحت کے لیے, موعظہ کے لیے, اس کا ٹائٹل بھی دنیا کی حقیقت واضح کرنا ہے کہ اصل میں دنیا ہے کیا. دنیا کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں ایک پیرابل سے سمجھا رہے ہیں انسانوں کو. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیان کیجئے, ان کو بتائیے دنیا کی زندگی کی مثال, بالکل جیسے پانی اس نے نازل کیا آسمان سے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وَضْرِبْ لَهُمْ, یا رسول اللہ ان کو بتائیے بیان کیجئے, دیکھیں قرآن میں کئی مرتبہ آپ پڑھتے ہیں قل, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے. جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں احکامات دیے گئے ہیں, قرآن میں احکامات آپ کو معلوم ہے کہ انڈیویجولی امپیکٹ کرنے کے لیے بھی دیے گئے ہیں اور کلیکٹیولی بھی دیے گئے ہیں. آخر غزوات کا بھی تو ذکر قرآن میں آتا ہے, جنگوں کا ذکر بھی تو قرآن میں آتا ہے. تو اسکالرز اس میں سے دو باتیں بتاتے ہیں کہ جب قرآن میں, جو تفسیر کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے, تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ان جنرل مومنین کو بھی دیا جاتا ہے. صحیح, یہ جنرل تفسیر کا اصول ہے جو انڈیویجول معاملات پر اپلائی کرے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر تو اللہ کے رسول کو ایڈریس کیا گیا تھا یا اللہ کے رسول کی ازواج کو ایڈریس کیا گیا تھا, ہمیں تو نہیں ایڈریس کیا گیا. نہیں, جنرل اصول یہ ہے کہ جہاں جہاں انڈیویجول کریکشن کی بات ہوگی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر اصل میں وہ پوری انسانیت کو حکم دے دیا جائے گا. اور جہاں جہاں اللہ کے رسول کو غزوات کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ آپ کفار کے ساتھ یہ کیجئے, آپ کفار کے ساتھ یہ کیجئے, اب یہ انڈیویجولی عوام الناس پر اپلائی نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیے, آپ اور میں تلوار پکڑ کے کسی کافر کا گلا یا گردن نہیں کاٹ سکتے کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو جہاں ملے ان کو اڑا دو. وہاں کس پر اپلائی کرے گا؟ خلیفہ وقت پر اپلائی کرے گا, اتھارٹی پر اپلائی کرے گا, جج پر اپلائی کرے گا, کسی بھی اقتدار والے پر اپلائی کرے گا جو دین کا سمجھ, فہم اور دین کی گہرائی کے ساتھ علم رکھتا ہوگا. تو قرآن میں جب یہ آتا ہے یا رسول اللہ ان کو بتا دیجئے یا رسول اللہ آپ یہ کیجئے, تو اس کا یہ کانٹیکسٹ آپ کو تفسیر کے اسکالرز بتاتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر بھی آیا اور یہ جنرلی ایک بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اللہ تمام انسانوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ تمام انسانوں کو بتا دیجئے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول کے سامنے تو قریش موجود تھے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا رسول اللہ قریش کو بتا دیجئے. نہیں, قرآن ہدل للناس ہے. قرآن جو ہے یقیناً اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ قریش کے لوگ تھے, لیکن قرآن رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا سامان ہے. تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ ان کو دنیا کی زندگی کی مثال بتا دیجئے, کما ان انزلناہ من السماء, جو بالکل ایسے ہے پانی کی طرح جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. اب اگر میں آپ سے ایک سوال کروں, ما ان کا مطلب یہاں کیا ہے؟ پانی سے کیا مطلب ہے؟ پانی نازل کیا مطلب؟ آپ کا ٹینکر جو ہے وہ آسمان سے آتا ہے, بارش. ما ان کا مطلب ہے بارش. تو بارش تو بادل سے نہیں آتی, بادل آسمان سے, بارش آسمان سے گرتی ہے یا بادل سے گرتی ہے؟ آپ کہیں توبہ ہے, تو بادل تو آسمان پہ ہوتے ہیں نا. ہاں, لیکن اللہ کے پاس الفاظ کی کمی تو نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا من السما؟ دیکھیں, میں مجھے پتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ان چیزوں پر اعتراض نہیں کرتے ہوں گے, لیکن اورینٹلسٹ کو جانتے ہیں نا, مستشرقین جن کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے, وہ نان مسلمز جو کہ قرآن کو پڑھتے ہیں, عربی زبان سمجھتے ہیں, عربک کلاسیکل پوئٹری سمجھتے ہیں, جس ٹائم میں قرآن نازل ہو رہا تھا جو شعرا اس وقت زبان استعمال کیا کرتے تھے, اور وہ اسی پیٹرن کے اوپر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ قرآن میں اس طرح کی جگہوں کو پن پوائنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آہا ہم نے غلطی پکڑ لی.